भागवत कथा राधा कृष्ण की उपासना में ही है। समस्त देवताओं की उपासना मिलकर राधा कृष्ण की उपासना का पाषण में भी नहीं आएंगे, कोटि कोटि भाग्य में भी एक भाग नहीं होगा। यदि अंत की कथा से आप लोगों ने श्रवण किया, गोपियों की आराधना कृष्ण की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ, स्वयं कृष्ण ही अपनी प्रिया जी की आराधना करते हैं, इसलिए उनकी आराध्या देवी का नाम राधिका जी है। ये भी और ये भी सुना भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने राधा नाम का उच्चारण नहीं किया, क्योंकि राधा नाम उच्चारण करने से ही उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ जाती, वो विवल हो जाते, नहीं तो भागवत की कथा ही नहीं होती। ऐसा ये गुप्त और समस्त सारों का सार ये श्रीमती राधिका जी का। तो ऐसा प्रेम या राधिका जी के और कृष्ण के प्रति हमारी कैसे ममता हो, वैसी भक्ति हमको कैसे मिले, इसीलिए भागवत जी का अवतार हुआ है। कृष्ण ही भागवत के रूप में अवतरित हुए हैं, कैसे होगा इसी के लिए बतलाया। एकादश स्कंद ये साधन, अब एकादश स्कंद की कथा आरंभ हम लोगों की होने जा रही है। कैसे हम लोग उनको प्राप्त कर सकते हैं? ना तो ये ऐसी रसमयी उनकी उपासना है, कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं, हम ऐसे कृष्ण और राधा जी की गोपियों के भांति कैसे सेवा कर सकते हैं? इसके लिए प्रारंभ से ही उपदेश सब दिए गए हैं। उन उपदेशों में हम देखते हैं, पहले नारद जी आएंगे, वसुदेव जी को उपदेश दें, कैसे हम जीव कैसे भगवान की भक्ति लाभ कर सकते हैं और ऐसा प्रेमा भक्ति लाभ कर सकते हैं जिसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी अभी 500 वर्ष के अवतरित हुए, अपने परिकरों के द्वारा उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया है। तैयार कर कृष्ण प्रेम कैसे होगा, इसलिए अब हम लोग साधन पर चलेंगे। बिना पेड़ के ऊपर में उठे ही उसका फल ले लेंगे ऐसा संभव नहीं। अब हम लोगों ने सुना कि कृष्ण प्रेमी सर्वोत्तम कीजिए, यही हम लेंगे, किंतु किस साधन से वो मिलेंगे? सबसे पहली बात यह है कि गुरु मुख से ये सुनो, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मैं मन ही नहीं, ये संसार की जितनी भी चीजें हैं, सामग्रियां हैं, हमारे भोग की रूपे पैसे बंधु बांधव ये जितने भी हैं, हमको एक सेकेंड के लिए खुशी नहीं कर सकते हैं। इन चीजों को समझो, गृहस्थ रहने पर भी जो प्रहलाद इत्यादि की भांति महाप्रभु के परखों की भांति उससे निष्प्रिय हो, आसक्त मत हो। इसलिए अभी हम लोग एकादश स्कंद के पहले ये शरीर के संबंध में बतलाया, ये कांच का बाजा है, ठोकर लगने से ही ये फूट जाएगा। आप लोग देखते हैं ना, पेपर में आता है, आज वो मर गए, कल वो मर गए, कल 10 आदमी मर गया, 20 आदमी, 1000 आदमी ये मर गए, ये सुनते हैं। ये जीवन का ठीक नहीं कि यहाँ से हम चलेंगे तो घर पहुंचेंगे कि नहीं, कोई ठीक नहीं। इसलिए हम लोगों को अब साधन करना चाहिए, और साधन में हमारे नौ जोगिंद्रों ने, जो कि महाराज जनक को जो साधन बतलाया, वो साधनों का अब हम लोग आरंभ करेंगे। आप लोग ध्यान से श्रवण कीजिए, इन साधनों में एक एकादशी भी एक है। जो लोग एकादशी नहीं करते और साधन भजन सब करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, बात करते हैं, भी जाते हैं जो लोग सब कुछ करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, भागवत भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, यदि एकादशी का व्रत नहीं करते तो समझो कि उनको नाम में भी विश्वास नहीं, भागवत में भी विश्वास नहीं। इसलिए एकादशी जरूर करना चाहिए, यदि प्राणों की भी बाजी लग जाए एकादशी नहीं छोड़ना। चैतन्य महाप्रभु को एक बार पुरी में पांडवों ने कहा, यहाँ तो एकादशी उल्टी हुई है, यहाँ एकादशी नहीं करते, और ठाकुर जी का जितना अन्न और सब माल हुआ और सब भोग 56 भोग 36 व्यंजन उनको ला करके रख दिया। शाम को महाप्रभु जी ने उनका सौ सूती प्रसाद को भरना आरंभ, बाकी हो नहीं। एकादशी नहीं करने से बहुत से पाप लगते हैं, अन्न खाने से उस दिन जितने भी विश्व ब्रह्मांड में पाप हैं, ब्रह्म हत्या से लेकर के गुरु हत्या से लेकर के सब पाप वो हत्या तक सब उसमें प्रवेश करते हैं। इसलिए अन्न का दाना उस दिन गेहूं का बना हुआ, चना से बना हुआ या चावल से बना हुआ या अन्य जाती चीजों को ग्रहण मत करो। महाप्रभु जी को देख जब दिया, उन्होंने अपने भक्तों के साथ में उनकी गुणगान करने लगे, उसकी परिक्रमा करने लगे, सौ स्तुति करने लगे, 1008 बार उनको प्रणाम किया महाप्रसाद को, और कीर्तन करते 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 सारी रात बिता दी। सदरे समुद्र का स्नान किया, जब सूर्य का उदय हो गया, पारण का समय हो गया, तो सब अपने भक्तों को बांट करके पाए। वहां पर पंडे उल्टे हुए हैं, भगवान नहीं उल्टे हैं, एकादशी नहीं उल्टी, वो उलट गए हैं ना पंडे लोग, इसलिए उलटने से भक्ति को उल्टा देखते हैं, भक्ति सीधी खड़ी है और वो उलट गए, उलट करके नीचे से वो देखते हैं कि भक्ति उल्टी, इसलिए भक्ति कभी नहीं उलटती। 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष के अंदर में लड़का लड़की कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, जरूर करना चाहिए। यदि निर्जला उपवास करने में असमर्थ हैं, थोड़ा सा एक बार दूध या कुछ शरबत भगवान को कुछ देकर दो। यदि उससे भी नहीं चलता है, कलयुगी जीव हम लोग हैं, इच्छा होने से चल जाएगी, लड़की की शादी के दिन में उपवास कैसे रह जाते हैं सर, एकादशी के दिन उपवास नहीं रहा जाएगा। पति और पत्नी में थकर और शुकुर हुई तो 3 दिन तुमने पानी नहीं पिया, ये तो हो जाता है। और भगवान के लिए एकादशी में तुम नहीं कर सकते, नहीं सिर में दर्द हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कुटू का हलवा खाते हैं तो भी पेट गर्म हो जाता है, हमको सज्ज नहीं होता, हमारे घर में इसी दिन एक आदमी मर गए थे, इसलिए एक आदमी हमारे यहाँ ये सब बहाना बाजी है। और सबसे बड़ी बात, महारानी एकादशी जी, आपको 5 वर्ष हमने किया बड़े कष्ट से, अब आप अपने घरों को विदाई हो जाइए, उनका उद्यापन करते हैं, ये सबसे बड़ा दोष है। इतने आदमी यहाँ पर है, एकादशी का उद्यापन खबरदार मत कीजिए, तो पहले अपनी मैया और बाप को उद्यापन कर दीजिए कि प्रभु आप अब विदाई, लक्ष्मी जी को पहले उद्यापन कर दीजिए, तो उद्यापन नहीं, अरे ये तो लक्ष्मी जी की भी लक्ष्मी एकादशी है, कृष्ण की प्रिया है, इनको घर में आए हुए को विदा करनी चाहिए। इसलिए ये कुछ लोगों का ऐसा है विचार, एकादशी के दिन 11 वो आ जाएंगे ना ग्लास, और 11 ये जागरूक ज्ञापन करेंगे कुछ पैसे कैसे 11 रुपए कम से कम तो मिली जाए, 11 कपड़े, 11 ग्लास, 11 गमछा, 11 थाले, 11 बाटियां ये सब मिल जाएगी।
शक्ति
ये सब करने मत जाओ, जो यहाँ से सुन करके जाओ, एकादशी मत समाप्त करना, 80 वर्ष तक जरूर करो, और यदि नहीं होगा तो उस समय देखा जाए, और उसके पहले यदि मुक्ति हो गई तो एकादशी, एक एकादशी का इतना महात्म है, विश्व ब्रह्मांड के समस्त पापों को उद्भव कर सकता है। हम लोगों ने देखा है जो मर नहीं रहा, प्राण नहीं निकल रहे हैं, बड़े दुख से दुखी हो रहे हैं, छटपट कर रहे हैं, सखी और पेशाब हो रहे हैं, एक आदमी ने उनको कहा जाकर इसकी रुचि नहीं हो रही है, अच्छा मैं अपने एकादशी से एक एकादशी प्रावधानों की खोज देता हूँ, जहाँ काम में गया मैं तुमको एक एकादशी संकल्प करके तुमको फल देता हूँ, झट एकदम आंखें खुल गई, होश हो गया, बड़े सुख से सबके देखते देखते भगवान का नाम स्मरण करते हुए प्राण को
छोड़।
इसे यहाँ पर जितने उपस्थित हैं, लड़के लड़कियां, वृद्ध युवा, जो नहीं करते हैं आज से एकादशी करना आरंभ कर दें, यदि उनसे कोई अहित होगा तो मैं इसके लिए जिम्मेदार रहूंगा, आप लोग आकर के यदि भक्ति लाभ करना है, यदि भागवत को हृदयंगम करना है, यदि कीर्तन करना है, साधन भजन करना है, तो यही एकादशी से आप मुकर तुम्हारे समस्त मनोरथ परिपूर्ण हो जाएगी, अंततः गांठ में बांध करके आज ये चीज को लेते जाना। दूसरी बात, एकादशी करने में दूसरे दिन का ख्याल रखना चाहिए, द्वादशी का पहला चरण भी एकादशी ही होता है, इसलिए द्वादश चरण को बात देकर के सब पारण करना चाहिए। हमारे यहाँ से पंजिका निकलती है छोटी सी, बिना पैसा बिना मूल्य काम वितरण करते हैं, उसमें पारण का समय दिया रहता है, इसलिए तो अम्बरीश महाराज और दुर्वासा में यही तो हुई विवाद का बीच है, पारण का समय जा रहा था और दुर्वासा भी आए, उन्होंने दुर्वासा का ख्याल नहीं करके पारण का ख्याल किया, इसलिए चक्र उनकी रक्षा की, नहीं तो दुर्वासा जला देता, इसलिए पारण समय के अंदर में हो, सूर्योदय से लेकर के जो समय दिया जाता है इस पर भी ध्यान रखेंगे। उत्तर भारत के लोग पारण पर ध्यान नहीं देते, एकादशी करने 12 बजे किया नहीं किया कुछ ऐसा नहीं, ठाकुर जी का पूजन पालन कर करके जिन वैष्णवों को या भक्तों को ब्राह्मणों को देना है दे लो, और उसमें से एक दाना भी पारण कर लो, समय के अंदर में तुम्हारा पूरा फल मिलेगा, कृष्ण के चरणों में प्रेम होगा, इस तरह से एकादशी का प्रस्तावन करना चाहिए। और भी जो नियम एकादश स्कंध में आएंगे उन नियमों के अनुसार हम साधन भजन करके इस अत्यंत सुंदर सार युक्त जो कृष्ण प्रेम है उसके लिए हम लोग अब आगे हैं। एकादशी के दिन चाय मत लेना, भंग मत लेना, बहुत से लोग भंग और चाय को देखते हैं, अन्न तो है नहीं तो चाय और भंग चल सकता है, नहीं नहीं, साबुन का दाना आजकल आटा मिला करके बनते हैं, पहले शुद्ध होता था, इसलिए वो भी वो साइन का चावल या साइन समझ, ये मत लेना, ये अन्न के अंतर्गत है, मत लेना। दूध भी भगवान ने प्रचुर दिया है, फल है, फूल है, केले हैं, अरे कुछ नहीं, ये गुड़ थोड़ा सा लेकर के पानी पी लो, कोई भी हर उपवास कर सको, अच्छा ये सब चीजों को लेकर के जाओ, ये भागवत का सुनना होगा। अब आगे की कथा हम लोग साधन के संबंध में विचार करेंगे, ये भागवत में बतलाएंगे, अपने समय हो गया।
Yeah.
सदरे हम लोगों की कथा दशम स्कंदर संपूर्ण हुआ। उसमें भगवान कृष्णचंद्र जी वसुदेव जी के द्वारा निर्गत है, साधारण लोगों को, बाह्य लोगों को जिनको बाह्य ज्ञान है, जड़ीय ज्ञान, उन लोगों के लिए दिखलाया मानो वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश जिनको पृथ्वी पुत्र के रूप में मिले हैं उनको वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान की क्या जरूरत है। देवी जी ने उनसे प्रार्थना की कि आपने दो पुत्रों को लाया है, हमारे भी छह पुत्र तंत्र के द्वारा मारे गए हैं, आप कृपा करके उनको हमारे पास मिला दें। कृष्ण सुपर लोक में गए बलि महाराज जी के यहाँ, बलि महाराज जी ने उनको पुत्रों को लाया और उन पुत्रों को लेकर के कृष्ण बलदेव जी द्वारका में लौट करके देवकी मैया को, देवकी मैया के स्तन से, उस समय उनकी उम्र होगी 125 वर्ष की, उससे भी अधिक, कृष्ण ही उम्र इतनी है और कृष्ण तो उनके आठवें पुत्र हैं, तो इसे समझो देवकी जी के स्तन तब तक सूख गए हैं और उसमें दूध का पुनः प्रवाह हो गया और दूध सिंचवाने लगा। उन्होंने बच्चों को, आठों बच्चों को गोदी में लेकर के स्तन यही स्पर्श कराया, दिव्य देवता का रूप धारण कर लिया। कृष्ण ने कहा कि ये पहले मरीचि जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी के चरणों में इन्होंने अपराध किया, इनकी भाव हम इनको नहीं समझ सके, उनको समझा कि अपने पुत्री पर वो कुदृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अब चंपा किया, उनके अपने चंपा से ये हिरण्यकश्यप के छह पुत्र हुए। इसके बाद में वो लोग देवकी के गर्भ में आए हैं और उनके पिताजी से ही उनकी मुक्ति हो, कालयानी के पुत्र होकर के आए और पुनः अब कौन से ही कालयानी हुआ है, कालयानी ने उनको मारा, मार करके ये शीतल लोक में निवास कर रहे थे, भगवान वहां से ले आए, ये क्षण गर्भा है और उनको स्पर्श करते ही इनका उस पुजोनी से उनका उद्धार हो गया और ब्रह्मताप भी उनका समाप्त हो गया और कृष्ण के दर्शन से और उनका जूठा दूध पीने से उनका कल्याण हो गया। और भी इसमें बहुत सी बातें हैं, समय नहीं, विशेष करके भृगु जी भगवान की परीक्षा करने चले ब्रह्मा विष्णु महेश में, और देवताओं को तो छोड़ दो, वो शंकर जी के पास में गए, उनको प्रणाम नहीं किया बिगड़ गए, अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास में गए उनको भी प्रणाम नहीं किया, वो क्रोध में भर करके अभिचंपात देने चले। विष्णु के यहाँ गए, फिर समुद्र में लक्ष्मी जी उनके पैरों को पलोट रही थी और उन्होंने देखा आओ नताओ और विष्णु के बस्तखल उन्होंने बाएं लात से एक पैर मार, प्रभु करके खड़े हो गए, बोले जिसे आपके अत्यंत सुकोमल चरणों में कष्ट हुआ होगा आपको ही ये कष्ट हुआ, चोट लगी होगी, और उसको सहलाने लगे और प्रभु ही उल्टा ही क्षमा मांगे, बस उनके चरणों में वो गिर गए भृगु महाराज और बोली जैसे देवताओं में समस्त ईश्वरों में गई। यदि विष्णु ही तीनों देवताओं में श्रेष्ठ हैं, इनके जो मूल अंश जो कृष्ण है उनकी तो बात नहीं, इस तरह से उन्होंने सिद्ध किया। यदि भगवत उपासना करनी है तो कृष्ण की उपासना से सबकी उपासना हो जाएगी, पृथक रूप में किसी की उपासना करनी चाहिए। यदि राम के नाम या कृष्ण के नाम लिख करके गणेश जी केवल मात्र तीन बार परिक्रमा की और देवता लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके उन लोगों को अग्र पूजा नहीं मिली, देखो तो उनके नाम की इतनी महिमा, तो वो उस भगवान की कृष्ण की महिमा क्या होगी। इसलिए निसंकोच चित्त होकर के भगवान कृष्ण का ही और श्रीमती राधिका का ही उपासना सर्वश्रेष्ठ है, विशेष करके मथुरापुरी में कृष्ण आए उनकी लीला हुई है, इसलिए आप लोग राधा कृष्ण की ही उपासना करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने हम लोगों की एक प्रकार से दशम स्कंध समाप्त हुआ, एकादश स्कंध आराम करेंगे। इसमें किस प्रकार से कृष्ण ने भूभार हरण किया, कौरव पांडवों को सेनाओं को सबको संहार किया, उनके इष्ट मित्र बंधु बांधव की सेनाओं का भी संहार कर दिया और अंत में सोचा ये देवता लोग आए हैं हमारे वंश में और भगवान के अवतार भी आए हैं, इनको छल बल कल से उनके स्थान पर भेजना चाहिए। काल के रूप में कृष्ण उस समय में बैठ गए, जैसे कांटा से कांटा निकालते हैं वैसे कांटा से कांटा निकाल करके भूभा धारण किया और वो कांटा जिसे निकाला था वो कांटा क्या है
जदुवंश।
किंतु ऐसा मत समझना जदुवंश माने देवता के और भक्तों के अवतार के लोग हैं, उनको इसी ब्रह्मचाप के बहाने कैसे उनको स्थान को भेज देंगे और जो बाहरी लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं वो समझेंगे लड़ सकता से मर गए। किंतु नहीं, एक ये भगवान की लीला है, उन्होंने इसी बहाने से उन लोगों को यथा स्थान भेज दिया, लोगों ने समझा इस प्रकार। इसके बाद में उसके पहले उन्होंने उद्धव जी को ज्ञान इत्यादि दिया था, इसका भी वर्णन किया जाएगा। और उसके पहले ही नारद ऋषि वहाँ आए, वो विश्व में उस समय में प्रचार करते थे भगवान नाम का, वो एक जगह में खड़े रह सकते थे, बस दोहन काल तक एक जगह रहते थे। क्यों? दक्ष प्रजापति का अभी संपात था, दक्ष प्रजापति के जो पहले लड़के थे इतने हजारों हुए और वो उनको दक्ष प्रजापति ने नारद जी को दे दिया, आप उनको शिक्षा दें, उचित शिक्षा दें, कल्याणकारी शिक्षा दें। उन्होंने उनको ये बताया ये संसार झूठा है, ये संसार क्षणिक है, नश्वर है, शरीर ये मैं नहीं, हम सभी भगवान के दास दासी हैं, भगवान को भूल करके यहाँ पर आए और संसार में अनंत काल से हम संसार में घूम रहे हैं, इसलिए एकमात्र कर्तव्य इस जीवन में आकर के भगवत भजन करना है। बच्चे का कोमल स्वभाव, वो सभी बच्चे वन में चले गए और भगवान का भजन कर ले। दक्ष प्रजापति को जबकि ये प्रतीक मालूम हुआ, जैसे हमारे बच्चों को तो उन्होंने भजन में लगा दिया, तो वो हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज ऐसा मत कीजिए, हमने बड़ी आशा से बच्चों को मैंने पैदा किया था, बोलो माता पिता की सेवा करते और संसार की बुद्धि करते, आपने भजन के लिए भी किया, अब से ऐसा नहीं करें। और फिर उनके बच्चे हुए फिर भेज दिया, फिर बच्चे हुए फिर भेज दिया और उनको वही एक शिक्षा लेकर के और उन सभी को भगवत भजन में लगा दिया। अंत में क्रुद्ध होकर के बोला हमारे बच्चों की बुद्धि तुमने बिगाड़ दी, अब आज से तुम कहीं भी अधिक समय तक नहीं रह सकोगे, जगह जगह तुम घूमते रहोगे। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ विषय के पल्ले से मुझे छुट्टी मिली और मैं विश्व में सर्वत्र घूम करते हुए भगवान के नाम का प्रचार करूंगा और सबको ये उपदेश दूंगा। तब उनकी जब जब इच्छा होती थी भगवत उपासना करने के लिए स्थिर चित्त से वो द्वारका में उपस्थित हो जाते, वो क्या था गोविंद गुप्तायन दर्शन लाल, कृष्ण की दर्शन की और उपासना की लालसा होती द्वारका में पहुंच जाते, क्योंकि उनकी भुजा से अनंत काल से ये चला रहा है। उसमें जब ऐसा लिखा है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये कृष्ण और राम के आगे पीछे से ये विचार नहीं है, जो पहले राम हुए हैं तब पीछे कृष्ण हुए, ये तो एकांतिक राधा कृष्ण का ये जुगल किशोर का नाम है। यहाँ पर हरे माने कृष्ण के चित्त को हरण करने वाली श्रीमती राधिका जी और कृष्ण माने समस्त लोगों के आकर्षण करने वाले कृष्ण अपने रूप से और उनको भी हरण करने वाली हैं ये राधा जी, इसलिए हरे कृष्ण माने राधा कृष्ण और हरे राम राधा रमयती इति रामः, यहाँ पर राधा रमण हरि गोविंद कृष्ण से यहाँ तात्पर्य है राम का, वहाँ पर उद्दासर श्रीमती से उनका मतलब, क्योंकि उनके साथ में सीता जी रहेंगी, कृष्ण के साथ में सब समय राधा जी रहेंगी और नहीं तो रसाभास दोष हो जाएगा। ऐसे जो कुछ नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए हरि राम कृष्ण जो कहे सब ठीक है, जगन्नाथ जगत नियंता ब्रह्म परमात्मा अक्षर इत्यादि सब बातें हैं, विष्णु बातें हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है। किंतु जो संप्रदायिक शुद्ध रूप में गुरु से दीक्षा लेकर के करने वाले हैं उनके लिए किस तरह से करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए उसी को जरा हमारे कृष्णदास जी महामंत्र आप लोगों को सुना रहे हैं। आप लोग बहेंगे
Thank you.
अपनी वहीं से कथा आरंभ की। आदिरथ के जो प्रवर्तक, विश्व ब्रह्मांड का जो सृजन करने वाले, प्रलय और स्थिति करने वाले, तथा आद्य शिलारथ का जो प्रवर्तक कृष्ण अथवा राधा और कृष्ण अथवा केवल श्रीमती राधिका है, उन परब्रह्म को सत्यम परम धीमही, उस कृष्ण को सत्यम परम धीमही, उस जीवन किशोर किशोरी को सत्यम परम धीमही, और अंत में श्रीमती राधिका को ही सत्यम परम धीमही प्रणाम किया। कथा समाप्त करके समाप्त क्या करते हैं, वही समाप्ति में भी वही कहते हैं सत्यम परम धीमही है। कहते हैं श्रीमद्भागवतम कस्मै केन, अभी जो श्लोक किसने उच्चारण किया, तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण शुद्धम विमलम विश्लोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। बस वही पर चल जाए, वही जगत इत्यादि को सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले और ध्वंस करने वाले, अथवा मधुरस का जिनसे प्राकट्य होता है, अन्वय अतिरेक में अथा प्रसंजोग और मिलन में जो रस की उत्पत्ति होती है, और अंत में उसी रस में इनके अतिरिक्त कोई जानने वाले नहीं है, ऐसे श्री कृष्ण अथवा ऐसे राधा और कृष्ण जुगल अथवा श्रीमती राधिका केवल वो रसस्वरूप ही है। कृष्ण से उनको माइनस करते हैं पर कुछ भी नहीं रहता। इसे श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय राधिका का कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसी प्रेम को लग करके चलना चाहिए। परीक्षित ने इस प्रेम को सुखदेव गोस्वामी से प्राप्त किए। जिस समय की वो जा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी चले गए, उसी समय तक्षक एक ब्राह्मण का वेश बना करके बीच में उसे कश्यप नामक एक ब्राह्मण से भेंट हुई। कहाँ जा रहा है, जाने प्रसिद्ध महाराज की सभा, क्यों जा रहा है, जा रहा है उस समय तक्षक काटेगा और मैं उनको उसी समय में चुटकी बजाते ही जीवित कर दूंगा, तो तुम नहीं कर सकेगा, देखो मैं वही तक्षक हूँ। बस तक्षक का रूप धारण कर दिया। अरे इस पेड़ को, बरगद के पेड़ को जो इतना लंबा चौड़ा विशाल है, मैं काटता हूँ, तुम इसको बचा दो तो मैं समझ जाऊं। कजा से सब ठीक है, तुम काटो। बस उसने भीषण फंस प्रकट करके और उसको जड़ में काटा। वो जड़ से मूल तक और अंत तक सब कुछ एक सेकंड के अंदर में जल करके स्वार हो गया। बस मुझे ठीक है, और वो एकदम गर्व से उनके तरफ में बेनालता, तो तुम इसको जीत करो। बस उन्होंने अपनी जड़ी बूटी निकाली, उसे धोती और भगवान नाम से मंत्र से फूंक कर उसके अपने हाथ में लिया और रात के ऊपर में उन्होंने दे मारा, और मारते ही देखा जैसे उसने अंकुरित हो गए पत्ते और धीरे धीरे एक सेकंड कदम में विशाल। अरे महाराज, आपको गजब कर दिया, आपको जरूर प्रतिकूल जगह। ये देखिए आपके सामने हीरे जवाहरात मोहरों की मैं ढेर कर देता हूँ, या तो परीक्षित महाराज को बचाइए नहीं ले लीजिए। उस ब्राह्मण के मुख से पानी निकलने लग गया। बस रुपये पैसे ले लिए और लौट गया। उस समय में धर्म ने इसको ऐसा कहा कि आज से तुम्हारा मंत्र और कोई काम नहीं करेगा, तुमने पैसे के बल से उसको तुमसे छोड़ दिया अपनी चिकित्सा, और पैसा ही तुम्हारा प्रधान हो गया। तो जिन पेशा में भागवत में जब अर्थ प्रधान हो गया, औषधि में जब अर्थ प्रधान हो गया, आजकल के चिकित्सक की बातें देखते हैं ना, कहते हैं कि अभी 1,00,000 रुपया लाओ नहीं तो हमारे यहाँ से चले जाओ। ऐसे ऐसे बड़े बड़े चिकित्सकों को हमने सुना है, निष्ठुर निर्दय होते हैं। मंत्र गीत आज इसीलिए समाप्त हो गया, उसी समय से मंत्र विद्या करी करी वो आया तक्षक। उसके पहले ही उन्होंने चित्त को भगवान ने लगाया, उन्होंने मन को लगाया, ब्रह्मांड में ले गए और ब्रह्मांड में ले जाकर के राधा कृष्ण के चरणों में जुगल चरणों में लगा दिया और उसमें से निकाल करके और राधा कृष्ण को गोलोक वृंदावन में लेकर के चले गए। शरीर निरस और बिना आत्मा का रह गया, सूखा भूसा जाए। और वो आया तब तक ने किसी को काटा, वो भूसा तो ऐसे ही जला हुआ था, उसको कुछ नहीं कर सका, वो जल करके खत्म हो गया। उसके पहले परीक्षित महाराज कहां तो लोग वृंदावन धाम में इस भाव से, जिस भाव को देने के लिए सुखदेव गोस्वामी आए थे, क्या देने के लिए? गोपी प्रेम। उस गोपी प्रेम में वो पहले से भगवान के परिकर थे, थोड़ा और भी शुद्ध होकर के भगवान के प्रेम में मस्त होकर के वहां पर परिकर हो सकते। ऐसा मत समझना कि सुखदेव परीक्षित महाराज को सांप ने दस दिया, उनको इस जगत का कोई विशेष स्पर्श नहीं कर सकता। इस तरह से परीक्षित महाराज वहां पर चले गए। उससे थोड़े से पहले मैया वहां आई, मैया ने बेटा मैं स्त्री बुद्धि की हूं, मैं इतने तत्व विज्ञान इत्यादि में समझ नहीं सकी, मेरे लिए थोड़े रूप में इस भागवत का भी सार कहो। भागवत तो ऐसे ही निगम कल्प स्वरूप गलितम फलम सुखा समाई है, किंतु इसमें भी सार जो चीज है वो उसको बताओ। बस मैया उन्होंने बतलाया, देखो समस्त आराधनाओं से उपाख्यानों के द्वारा बतलाया, दो उपाख्यान जिसमें गोप कुमार का उपाख्यान और नारद ऋषि का उपाख्यान बतलाया और अंत में उसके द्वारा बतलाया, मैया अब मैं तुमसे क्या लज्जा करूं और तुम भी हमसे क्या लज्जा करो। अब लज्जा करने की जरूरत नहीं है, इस कृष्ण को तुम अपना परम प्रियतम गोपियों जैसा समझो। और गोपियों ने जिस प्रकार से उनकी आराधना की उसी प्रकार से आराधना करो। ये श्रीमद् भागवत का साथ तुमको मैंने बतलाया, बस वो कृष्ण हो गई और वो भी शरीर को छोड़ करके गोलोक वृंदावन में। ऐसे ये श्रीमद् भागवत अंत में सुख गोस्वामी जी कहते हैं, अपने गुरु जी को प्रणाम करके तब अंत में कहते हैं, नाम संस्कृतम जगत सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि। उस हरि को मैं प्रणाम करता हूँ जिनका नाम संकीर्तन करने से संसार का सब कुछ दूर हो जाता है और राधा कृष्ण के चरणों में एकांतिक प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसे श्रीमद् भागवत को हम लोग भी प्रणाम करके आज समापन कर रहे हैं। एक ही समय आप लोग सब लोग अभी आज समाप्त हुआ ऐसा मत समझेंगे, आज से आरंभ करेंगे। और भागवत का जो सार हम लोगों ने बतलाया गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति, उसके प्रति आप लोगों का लोभ हो, आपका जीवन सार्थक हो। इस कथा में 10 दिन तक यदि किसी को किसी प्रकार से मन को हुआ हो वो हम लोगों को क्षमा करें, अन्यथा निजे बोईते पढ़लाम मुखस्त करलाम कुछ दिन पर भूले जाब और तरह भूले कुछ लाभ होवे ना, अभाव युक्त उपरी थकबे তার মধ্যে কোন রস ইত্যাদি আনন্দযুক্ত সেটি হবে না। জীবের সাক্ষাৎ নেই তাতে গুরু চৈত্য রূপে শিক্ষা গুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে। কৃষ্ণ বললেন বিখ্যাত গুরুকে জানো কৃষ্ণ রস্বরূপ, কৃষ্ণ রূপ নাকি শিক্ষা গুরুকে, শিক্ষা গুরু রূপ হয় শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপ। একজন রূপেতে একজন স্বরূপেতে দুইজনেই কিন্তু কৃষ্ণ তত্ত্বেতে অভিজ্ঞ। যদি কেউ এককে নিন্দে এককে বন্দে অর্ধক কোটে নিয়ায়, যদি কৃষ্ণই শিক্ষাগুরু হন তাহলে আমাদের গুরু থেকে যে দীক্ষাগুরু প্রদাতা তার থেকে কমা হলেন নাকি বেশি হলেন? যদি কৃষ্ণই চৈতন্য মহাপ্রভু রূপ গোস্বামী আমাদের যদি শিক্ষাগুরু হন আর তিনি শিক্ষা দেন তাহলে এই জন্য কমে বেশি না করে দুজনই এক সত্য। শিলা প্রভুপাদ এই সবগুলিকে বিস্তৃতভাবে তো বলেছেন, কিন্তু হ্যাঁ
उन्हीं यथार्थ शिक्षा गुरु होना चाहिए हुआ चाहिए। आज जो शिक्षा गुरु और यथार्थ गुरु दूजन मध्य क्लैश हो गए तो ताले आर गुरु दूजन में जेखने क्लैश होते एक साथ पढ़ने पर क्यों क्यों करे বলছেন এই শিক্ষা গুরু কৃষ্ণই স্বয়ং কি করেন ওই যে বলল প্রেম দন্তমে কাম দন্ত উনি প্রেম দিবেন কে কৃষ্ণ উনি বলছেন যে তুমি আমাকে প্রেম দিয়েছ কাম দন্তমে গোপীগণের যে কাম যে রুচি যে প্রেম যে তুমি দিতে পারো আর বেদনঞ্চমে বৈভবঞ্চমে বেদনম মানে বেদন মানে হচ্ছে অনুভূতি বেদ মানে জ্ঞান আর বেদন মানে অনুভূতিযুক্ত যে জ্ঞান অনুভবযুক্ত যে জ্ঞান ওটাকে বলে বেদন তুমি অনুগ্রহ করে দিয়ে আমাকে এই সবগুলি দিয়েছ গোপীগণ কিরকম আমাকে প্রীতি করে এটি অনুভবকে করিয়েছ তুমি এই জন্য যতগুলি আমি লিখেছি সবগুলি অনুভূতিযুক্ত লিখেছি এই জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ থেকে সংগ্রহ করে নিয়েছে প্রথমে রায় রামানন্দকে দিয়ে লিখান আর তারপরে সব বৈষ্ণবগণকে দিয়ে গলার কণ্ঠার এইটি আর ব্রহ্মসংহিতা ব্রহ্মসংহিতা হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত সাধন আর তত্ত্বজ্ঞান ভগবত তত্ত্বজ্ঞানের যে ভগবান কি আর এটা কি হচ্ছে রস তত্ত্বজ্ঞান রসের কথা এর মধ্যে তিনি দিয়েছেন ওই সবগুলি আমাকে বেদন মানে জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষা গুরু দিকে এখন বলছেন যে এইরকম হতে কৃষ্ণ কি করেছেন চৈতন্য মহাপ্রভুই তার মধ্যে থেকে সঞ্চারিত করেছেন কি অমৃত চয় জল ন জল তো সমুদ্র দিবে আর মহাপ্রভু রসের সমুদ্র তিনি রসন তৈরি করেন রসগুলি কি এই যে বারোটি রস বললাম এই বারো রসের একটি সাধারণভাবে জ্ঞান তিনি দিলেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু মধ্যে আছে কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন কিসের জন্য গাধা ভাব আর সাধন করবার জন্য এইটা তার মধ্যে হওয়ার কথা নয় নাই তো যাবেন কেন তাহলে ওই যে বললেন যে ভক্তি স্বামী সিন্ধু উনি সব কিছু অনুভবযুক্ত ব্রহ্মা যদি হৃদয়তে প্রবেশ করছেন তাহলে আর হবে না কেন হলেও একটা জিনিস আছে তাহার লীলা শক্তি কৃষ্ণের মধ্যে এমন একটি ভাব ভগবানের মধ্যে একটি এমন একটি করে অনুভূতির ন্যায় কৃষ্ণের মধ্যে থাকে আর ভক্ত মানো আমি অনুভব করতে পারি নিত্য নয় মানে আমি অনুভব আমার ক্ষুধা লেগেছে কৃষ্ণ তো ক্ষুধা লাগবার কথা নেই এটা লীলাশক্তির দ্বারা ভাব উৎপন্ন হলো তখন এটা